Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse number 21 and 22. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकारघुनाथ वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। सातवां अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 21। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचरां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। शब्दात् यो यो याम याम, यो यो मतलब जो जो, याम याम मतलब जिस जिस। तनुम भक्तः, तनुम यानी देवता का कोई कोई भी रूप हो उसकी जब वो भक्ति करता है, जो जो जिस जिस देवता के रूप की भक्ति करता है, श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धा मतलब बहुत ही श्रद्धा से, अर्चितो मतलब उनकी पूजा करता है, इच्छति और पूजा करने की इच्छा करता है। अब हर कोई भगवान के पास नहीं जाता, कुछ लोग देवताओं के पास आते हैं और श्रद्धा से उनको पूजा करने की इच्छा करते हैं। तो भगवान कहते हैं तस्य तस्याचलम, तस्य मतलब उस उसकी मतलब जिस जो जो आया है उस उसकी अचलाम, अचलाम मतलब श्रद्धा को स्थिर कर देता, अचल कर देता है। चलायमान का मतलब होता है कभी किसके अंदर श्रद्धा, कभी किसी के अंदर श्रद्धा, कभी किसी, लेकिन एक पर्टिकुलर देवता की जब वो भक्ति करना चाहता है तो भगवान कहते हैं तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, मैं उसकी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ। ताम एव, ताम मतलब उस, एव माना निश्चय ही, वेददामि हम, देता हूँ मैं, यानी कि उसको वो श्रद्धा भी मैं देता हूँ जो वो किसी देवता को सरेंडर कर सके, कि किसी देवता की भक्ति कर सके, उसके लिए जो उसे श्रद्धा चाहिए होती है वो भी भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त, उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो कि देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। अनुवाद, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझा रहे हैं कि भगवान ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। भगवान बलात् बाई फोर्स किसी से अपनी भक्ति नहीं करवाते। अगर जीव भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है, वो केवल अपनी इंद्रित तृप्ति की इच्छा करता है या भौतिक संसार में ही सुखी रहने की कोशिश करना चाहता है, यहीं पर सुखी रहना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है और देवताओं की पूजा करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे सुविधाएं प्रदान करता हूँ, मैं उसे वो श्रद्धा भी प्रदान करता हूँ जिससे वो अपने आप को उसी देवता के समर्पित कर सके। आगे श्री प्रभुपाल जी बहुत ही सुंदर प्रश्न उठा रहे हैं कि कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने करके उन्हें माया के पाश में गिरने क्यों देते हैं? आखिर भगवान ऐसा करते क्यों हैं? भगवान को पता है कि संसार में जो कुछ भी है माया है, जब इनमें कोई व्यक्ति गर्क हो जाएगा तो वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो भगवान ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा क्यों देते हैं जो कि देवताओं को भक्ति करना चाहते हैं या देवताओं से कुछ फल प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करना चाहते हैं, आखिर भगवान उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि उसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। भगवान ने फ्री विल दिया है जीव आत्मा को, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर भगवान उनको देवताओं की पूजा करने के लिए क्षमता प्रदान नहीं करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता। स्वतंत्रता मतलब तुम जो करोगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उद्देश्य हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले तो स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, श्रद्धा भी प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में देते हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। उपदेश भी तो दे रहे हैं साथ में, पहले उन व्यक्तियों की श्रद्धा को भी डेवलप करते हैं, उन श्रद्धा ताकि वो अचल रूप से देवता की भक्ति कर सके, लेकिन बता तो दे रहे हैं ना, शास्त्र में बता दिया कि मेरी भक्ति के अतिरिक्त सुख कहीं नहीं मिलेगा तुमको। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव आत्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीव आत्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही मुख्य बात बता रहे हैं। वे कहते हैं कि चाहे देवता हो या देवताओं के उपासक जीव आत्मा है, वो स्वतंत्र तो है जो भी करें, लेकिन स्वेच्छा से वो कोई जीव भी ना किसी देवता की भक्ति कर सकता है और ना ही देवता कुछ दे सकता है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए यदि कोई जीव ये इच्छा करता है कि मुझे देवता की भक्ति करनी है, तो उसको श्रद्धा भी तो चाहिए। वो श्रद्धा भगवान देते, और जब जीव ने उन देवताओं की भक्ति की है तो देवताओं को क्या करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट में उसको कुछ फल देना पड़ेगा, तो फल भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास आते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों में भी ऐसा बताया जाता है, वेदों में भी, कि अगर कोई पीड़ित हो जाए, किसी को कोई इच्छा हो, किसी को कोई इच्छा हो, तो उसके अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के पास जाना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण अर्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहते हैं, इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग होती है, विशेष इच्छा होती है, कोई पर्टिकुलर इच्छा होती है, कोई खास विश होती है, तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हें जिस जिस चीज को प्राप्त करना है तुम उस देवता के पास चले जाओ, तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तो भले मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, मेरी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अगर भौतिक इच्छाओं को पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य समझते हो, तो फिर ये इच्छाएं तो बाजार में किसी के पास से भी प्राप्त हो जाएंगी, तो फिर आप किसी के पास भी चले जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, इससे ये ले लेना, इस देवता से ये ले लेना, इससे देवता से ये ले लेना। तो भगवान कहते हैं किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं देवताओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए, वो भी भगवान ही बता रहे हैं। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित है। अगर कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं, अब ये प्रेरणा भी भगवान प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वतः से कोई अपने हृदय में बैठकर अपने हृदय को प्रेरणा नहीं दे सकता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं। देवता भी भगवान के अंश रूप हैं, विभिन्न अंगों के समान हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते हैं। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवताओं के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आगे श्लोक नंबर 22 में भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहति लभते सततः काम मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहति लभते सततः काम मयैव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहति लभते सततः काम मयैव विहितान् हितान्। शब्दात् सतया श्रद्धया, सतया मतलब वह उस श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा जो भगवान ने दी ना। भगवान ने कहा यो याम्यम तनुम भक्त श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामे व विदरामे। मैं जिसको जो श्रद्धा देता हूँ, जिसके कारण वो उस देवता की भक्ति करता है। और शिला प्रभुपाद जी के और आगे भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्त, ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधन निहते, तस्य मतलब उस देवता की आराधना मतलब पूजा के लिए, इहते मतलब आकांक्षा करता है। अब श्रद्धा भगवान ने दे दी, तो इस श्रद्धा के कारण वो उस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, और फिर उससे क्या रिजल्ट मिलता है, लभते च ततः कामान, लभते मतलब प्राप्त करता है, ततः कामान उस इच्छाओं को, जो उसकी इच्छा है उसको प्राप्त करता है। लेकिन भगवान बहुत ही विशेष बात बताते हैं, भगवान कहते हैं मयैव, मयैव, मय मतलब मेरे द्वारा, एव मना ही, केवल मेरे द्वारा ही विहितान व्यवस्थित, हितान मतलब निश्चय ही उन, ये जो सुविधाएं वो देवताओं की भक्ति करके प्राप्त करता है, जो लाभ प्राप्त करता है, जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, भगवान कहते हैं मायाएव ही विहितान हितान, वो केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं, मैं ही उन सुविधाओं को भी प्रदान करता हूँ। कितना अच्छा भगवान कह रहे हैं, पहले श्लोक में बोला श्रद्धा भी मैं दे रहा हूँ, फिर बोला जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो लाभ, वो इच्छाओं को पूरा भी मैं कर रहा हूँ। तो फिर ये तो 100% बेवकूफी है कि भगवान को छोड़कर किधर और जगह पे जाया जाए। तो ये बात तो भगवान श्री कृष्ण 23 में बताएंगे, लेकिन हम अभी 22 का अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं बोलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से याचना करते हैं। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यता देवताओं के पास इसीलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते हैं। जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक से और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भगवान हमें बता रहे हैं सातवें चैप्टर में। क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि चार टाइप के लोग तो मेरे पास आते ही नहीं है, चार टाइप के लोग मेरे पास आते हैं लेकिन उनमें से भी जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। और आगे भगवान ने उन व्यक्तियों के विषय में बताना शुरू कर दिया। पहले भगवान ने कहा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है जो ज्ञानवान है वो तो मेरे पास ही आएंगे। अब जो ज्ञानी नहीं है वो क्या करते हैं, तो फिर 20 में बताया कामे स्थे हृत्य ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो फिर अन्य देवताओं के पास जाते हैं। और अभी भी भगवान उन देवताओं के उपासकों के विषय में बता रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान ने देवताओं की पूजा के विषय में बताया है। अब ये टॉपिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे धर्म में इतने सारे देवी देवता है कि ऐसा लगता है कि ये धर्म नहीं है, सुपर मार्केट है देवी देवताओं का। जिसको किसी से पूछो आप किसकी पूजा करते हो, आप किसकी पूजा करते हो, आप किसकी पूजा करते हो, तो सबका एक अलग अलग देवता उपासक। मतलब जब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है ना, तो कुंभ मेला में जब जाते ना तो कुंभ मेला इज अ सुपर मार्केट ऑफ रिलीजन। समझ में नहीं आता ये धर्म कैसा है जिसमें करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को अलग अलग भगवान बना दिया गया है। इसलिए हमें देवताओं के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में भगवान के विभिन्न अवतार के विषय में श्री सुत गोस्वामी बताते हैं और सारे अवतारों के विषय में बताने के बाद वे कहते हैं एति चंद्रकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम मिडियंती युगे युगे। कि ये सब तो मैंने तुम्हें जो बताया वो भगवान के अंश और कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण तो साक्षात भगवान है। और अर्जुन भी कहते हैं भगवान को श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 12 में गीता सुनने के बाद अर्जुन ने बताया कि भगवान आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। अर्जुन कहते हैं मैं खाली ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद सदा असितो देवलो व्यास देवर्षि नारद वेद व्यासी सब कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े आचार्य मधु आचार्य शंकराचार्य ग्रेट आचार्य भी सब क्या कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। तो यहाँ पर यह प्रश्न सबसे बड़ा आता है कि भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में क्या अंतर है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण पहले दे चुके हैं 7.20 में, कामस्तस्य हृत्य ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मतलब जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, काम इच्छाओं द्वारा जिनका ज्ञान खत्म हो गया, अब ज्ञान जिसके पास नहीं वो तो बेवकूफ बचा ना। तो भगवान ने पहले बोल दिया कि बेवकूफ लोग देवताओं के पास जाते हैं और ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी लोग मेरे पास आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण जिससे हम ये समझ सकते हैं कि देवताओं की जो भक्ति करते हैं वो वास्तव में भक्ति नहीं बल्कि बिजनेस होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति समुद्र में जा रहा था, समुद्र में शिप में जा रहा था, शिप में बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर जा रहा था, अचानक रास्ते में तूफान आ गया और वो देवताओं को प्रार्थना करने लगा। हे देवता, अपने कुलदेव को याद कर रहा था कि आप मेरी रक्षा कर दीजिए और यदि मैं इस तूफान से पार हो गया तो मैं अपना घर बेचकर वो सारा का सारा धन आपको समर्पित कर दूंगा। देवता ने सुन लिया, उसी समय उसकी इच्छा पूरी हुई, तथास्तु। तूफान थम गया और वो अपना सामान लेकर सुरक्षित निकला। अब प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, उसका घर 1 करोड़ रुपए का था, वो सारे पैसे देवता को नहीं देना चाहता था। अब देवता के साथ उसका कोई प्रेम का संबंध तो था ही नहीं, सौदागिरी थी, बिजनेस था। तो उसने एक अनाउंसमेंट किया कि देवता को मुझे उतना ही धन देना है जितना कि मेरे घर का अमाउंट है। तो अनाउंसमेंट किया कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ और जिसकी कीमत है 1 रुपया, और उसके साथ मैं जो भी ये घर खरीदेगा उसको ये बिल्ली जरूर खरीदनी है जिसकी कीमत है 1 करोड़। इसे ये समझना चाहिए कि उसको देवता के अंदर कोई रुचि नहीं है, देवता के साथ कोई प्रेम नहीं है, वो केवल देवता को यूज करता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। फिर वो यही करेगा ना, 1 रुपया दे देगा देवता को, भाई घर तो मैंने 1 करोड़ में बेचा है, 1 रुपये में बेचा है, बिल्ली 1 करोड़ की है, वो पैसे तुम्हें थोड़े देने हैं। तो जो लोग देवताओं की शरण में जाते हैं उनके मन में केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की लालसा होती है, कोई प्रेम के कारण देवताओं की शरण में नहीं जाता है। और अगर संसार में इच्छा ना हो, अगर किसी की ये इच्छा नहीं होती है कि मैं संसार बहुत भोग करूं, आनंद प्राप्त करूं, तो भी वो देवताओं की पूजा करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो स्वर्ग में जाकर भोग कर सकें। क्योंकि शास्त्र कहता है यान्ति देव व्रता देवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक को प्राप्त करना कर लेते हैं। तो वो सोचता है कि 1 लड्डू खा के तो पेट बढ़ेगा नहीं, इस मनुष्य शरीर में कितना भोग करूंगा। तो मनुष्य शरीर में थोड़ी सी तपस्या कर लेता है, देवताओं के लिए उपवास रख लेता है, लोटी चढ़ा देता है या फिर कुछ और, तो फिर क्या होता है, वो सोचता है पूरी प्लेट मिल जाएगी लड्डुओं की, क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है वो तो भोग के लिए फिट ही नहीं है, कभी बीमारी है, कभी बुढ़ापा, तो इस शरीर में हम उतना भोग नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या सोचता है कि देवताओं की पूजा करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा, देवताओं का शरीर प्राप्त करके उसमें अनंत टाइप का भोग प्राप्त करूंगा। क्योंकि वो शरीर जो है देवताओं का वो एकदम फिट है, देवता लोग बूढ़े नहीं होते, देवता लोग सोते नहीं, आलस्य नहीं होता, और देवताओं का जो शरीर होता है वो भोग के लिए बिल्कुल फिट है। और देवताओं की पूजा का परिणाम क्या निकलता है जानते हो? हम जब देवताओं के पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, जिसके कारण इच्छाएं और भी बढ़ती चली जाती हैं, एक के बाद एक इच्छाएं। और यही इच्छाएं हमें भौतिक जगत के चुंगल से मुक्ति प्राप्त करने में बाधा बनती हैं। हम रोगी हो जाते हैं, इच्छाओं के कंट्रोल में हो जाते हैं। जैसे कोई यदि किसी को खांसी हो जाए और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसको दवाई दे कि हाँ ठीक है तुम दवाई लो, लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं है, तुम आइसक्रीम भी खा सकते हो और कुछ भी खा सकते हो, ठंडी चीजें भी खा सकते हो, खाली तुम बस ये एंटीबायोटिक लो और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। वास्तव में वो डॉक्टर बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि अगर आप दवाई ले रहे हो उसके साथ साथ आपको परहेज भी करनी होगी, वो वस्तुओं का परित्याग करना होगा जो कि आपके लिए हानिकारक है। लेकिन यदि डॉक्टर को आपकी स्वस्थता से कोई भी लेना देना नहीं है और वो आपको हर वस्तु का उपयोग करने के लिए मना नहीं करता है, आइसक्रीम खाने से मना नहीं करता, ठंडी चीजें खाने से मना नहीं करता, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे फीस लूटना चाहता है और दवाई देना चाहता है बस। वास्तव में इस देवता को आपकी भलाई से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए वो आपको हर वो वस्तु प्रदान करते हैं जो कि आपके भौतिक भोग का कारण बनती है और जो मुक्ति पद में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बहुत ही बेवकूफ है, कामेस्तस्य हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवत, वो बहुत ही बेवकूफ है, ज्ञान तो उनका हर लिया गया है तभी वो देवताओं के पास आते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि फिर भगवान उनको श्रद्धा देते क्यों हैं, क्योंकि भगवान ने कहा कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विददामि हम, तो फिर भगवान उनको श्रद्धा क्यों देते, श्रद्धा ही नहीं दे तो देवताओं के पास जाए नहीं। इस बात को हम इस उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि देखो अगर कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ता है और काफी सालों से फेल हो रहा है, फिर बहुत समय के बाद एक साल वो 40% मार्क्स लेकर पास हो जाता है, तो उसके टीचर उसको बोलते हैं ओ शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इस बार आपने बहुत मेहनत की है, आप पास हो गए। अब जो देवताओं के भक्त हैं वो भी ऐसे ही हैं, कई जन्मों से फेल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ भगवान के द्वारा इनकरेज किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि संसार के सारे लोग इंद्रिय भोग तो करना ही चाहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग किसी धार्मिक रास्ते पर चलना नहीं चाहते, मतलब वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं परंतु शास्त्र के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कई जन्मों से फेल होते आ रहे हैं, वो बस जीवन का उद्देश्य क्या होता है उनके लिए, इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग इंद्रिय भोग, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई वेदों को फॉलो नहीं करते, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, और अब उन्होंने इंद्रिय तृप्ति का वो रास्ता अपनाया है जो देवताओं की पूजा करके भौतिक लाभ प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि वेदों में हर प्रकार के व्यक्तियों के मनोभाव को देखकर वेदव्यास जी ने उपासना कांड भी लिखा है कि किसकी उपासना करनी चाहिए, किस टाइम पर किसकी उपासना करनी चाहिए, किसके लिए किसकी उपासना करनी चाहिए। तो पहले तो वो अपने इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे, केवल गलत तरीके से इंद्रिय भोग करते थे, लेकिन एट लीस्ट इट इज बेटर देन नॉट फॉलो वैदिक लिटरेचर, है ना। ये तो फिर भी अच्छा है कि वो तो वैदिक लिटरेचर्स को फॉलो ही नहीं करते थे, लेकिन आप कम से कम फॉलो तो कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चार बारी फेल होकर 40% मार्क्स लेकर पास हो गया तो ये फिर भी फेल होने से तो अच्छा है। तो उसी प्रकार देवताओं के भक्त भी एटलीस्ट वैदिक बात को स्वीकार करते हैं। तो भगवान को श्रद्धा प्रोवाइड करने का कैसा है मतलब, सो इट इज लाइक सेइंग टू शाबाश अ पर्सन हु वाज रिपीटेडली फेल्स इन एग्जामिनेशन एंड एटलीस्ट ही गॉट 40% मार्क्स। परंतु जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो मोस्ट इंटेलिजेंट है। भगवान ने कहा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो वास्तव में ज्ञानी है वो कहीं नहीं जाते मेरे अलावा। एक साधारण सा उदाहरण है कि एक बादशाह को पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसने क्या कहा कि मैं सबको बहुत बहुत दान दूंगा। तो सब लोग आए बादशाह के पास, किसी ने घर मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी। एक बुढ़िया थी, वो बोली बादशाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अब उसने जो मांगा है वो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब राजा ही उसका पुत्र हो जाएगा तो राजा का सारा वैभव किसका होगा, वो भी दोस्ती का हो जाएगा। तो उसने जो भी प्राप्त किया वो परमानेंट है, और बाकियों ने जो प्राप्त किया वो टेम्पररी है। मतलब जो डायरेक्ट से भगवान की उपासना करता है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है। इसलिए भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजिनोपि माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो तो मुझे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 7.21 में क्या बताया कि मैं उसको श्रद्धा प्रदान करता हूँ ताकि वो उसी देवता की भक्ति कर सके। तामेव तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विदधामि हम। जैसे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो हनी भी है जब किसी फूल के पास जाती है तो फूल का रस लेने के लिए, उसी प्रकार एक पुरुष का एक स्त्री में और एक स्त्री का एक पुरुष की ओर आकर्षित होता है। परंतु वास्तव में क्या है ये जानना चाहिए कि यह आकर्षण आया किधर से। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि देवताओं के पास पावर नहीं है, वो जो कुछ भी अपने उपासकों को देते हैं वो वास्तव में भगवान का ही है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो सारे एम्प्लॉयर्स को सैलरी देता है, पर क्या वो सैलरी वो अपने घर से लेकर आता है? नहीं, वो स्वयं या तो गवर्नमेंट से सैलरी, गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, या कंपनी का जो हेड होता है उसके द्वारा मिलती है सैलरी, है ना। उस व्यक्ति ने तो नहीं दी है। हमें लगता है कि देवता बहुत जल्दी इच्छा पूरी कर देते हैं, परंतु वास्तव में ये सारे फल भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं 22 में लबते चततः कामा तामेव विदधाम्यः। मैंने जो भी काम जो भी इच्छाएं देवताओं के द्वारा आप पूरी करते हो वो भी मेरे द्वारा ही आपको प्राप्त होते हैं। तो सार क्या है कि श्रद्धा की जो कृष्ण के द्वारा श्रद्धा प्राप्त हुई है, जैसे 21 में भगवान ने बताया सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमी हते, जो श्रद्धा प्राप्त हो रही है वो भी कृष्ण के द्वारा। और जो 22 में बताया लबते सततः कामान तामेव विदः, जो फल प्राप्त हो रहा है वो भी कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो फिर क्यों ना डायरेक्ट से कृष्ण की भक्ति की जाए देवताओं की बजाय, है ना। इनडायरेक्टली पहले देवताओं की भक्ति की जाए और भगवान से प्राप्त किया जाए, इससे बुद्धिमानी क्या होगी कि डायरेक्ट से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मतलब कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक कल्याणकारी है। इस बात को समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम से कुछ उदाहरण लेंगे और उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध क्षेत्र में जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो उसके बाद हस्तिनापुर का राजा उन्हें राज्य उन्हें मिला और वो हस्तिनापुर के राजा बने, तब उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण इतना अत्याचार हुआ है, इतनी अत्याय हुई है, तो उनको बहुत दुख हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो अपराध नष्ट हो जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए और लिखा गया भागवतम में कि 3 अश्वमेध यज्ञ करने से उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई जितने के 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र के समान उनकी, यानी कि इतनी ख्याति हो गई जितनी कि इंद्र 100 अश्वमेध करता है तो उसको जितनी ख्याति मिलती है उतनी 3 अश्वमेध यज्ञ करने से युधिष्ठिर महाराज को मिल गई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो भगवान का भक्त जो भी कार्य करता है वो देवताओं से भी ज्यादा महान हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, महाभारत में एक बार शिव जी का अर्जुन से युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध। शिव जी युद्ध से प्रसन्न होकर अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र दिया जो प्रलय के समय वो इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अर्जुन शिव जी से युद्ध कर रहा था, फिर भी क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे तो शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए। महादेव अर्जुन से कितना प्रसन्न हुए कि अपना महाप्रलय वाला अस्त्र उनको दे दिया। ना केवल महादेव बल्कि सारे देवता भी अर्जुन से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए तो वो सशरीर स्वर्ग गए और सारे देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया है कि रावण तो शिव जी का अनन्य भक्त था ना, परंतु जब उसका भगवान के साथ युद्ध हुआ तो शिव जी उसे बचाने के लिए नहीं आए ना। राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था तो शिव जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, सॉरी रावण क्योंकि शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना कि वो अपने भक्त को बचाने के लिए जाते, लेकिन क्योंकि युद्ध भगवान के साथ हो रहा था तो शिव जी ने इंटरफेयर नहीं किया। शिव जी अपने भक्त को बचाने के लिए नहीं गए, उन्होंने श्री राम को ये नहीं कहा कि ये तो मेरा भक्त है आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन अर्जुन जो कि शिव जी के भक्त भी नहीं थे और उनसे युद्ध कर रहे थे तो भी शिव जी उनसे इतने प्रसन्न हुए और उनको वो अस्त्र दे दिया जो कि कभी निष्फल नहीं होता, जो कि कभी जिसके अस्त्र से होने से आप कभी हार नहीं सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर हम एक तीसरा उदाहरण देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो उसको देवलोक प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत गीता कहती है यान्ति देव व्रतान देवान, देवलोक के प्राणी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त करते हैं। लेकिन देवताओं के जो लोग होते हैं वो नित्य नहीं होते हैं और ना ही वहां पर आपको नित्य रहने दिया जाता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण 9.21 में कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति, जब देवताओं के लोक में आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आपको पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, यानी कि आपको पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को सहना पड़ता है। और दूसरी एक बहुत खास बात है कि जो देवताओं के लोकों के निवासी होते हैं वो भी पूर्ण मात्रा से शुद्ध नहीं होते, उनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होता है। तभी तो काम के वशीभूत होकर इंद्र को अहल्या के पास आना पड़ा, लोभ के ईर्ष्या के कारण अपनी पूजा ना होने के कारण वो ब्रजभूमि में इतनी भयंकर वर्षा कर दी, मात्सर्य के कारण विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा, ब्रह्मा जी भी मोह के कारण इतने गुमराह हो गए कि भगवान की समस्त गायों और बछड़ों को चुरा दिया, यानी कि इतने मुख्य देवता हैं उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अवगुण होते हैं, इतने अनर्थ होते हैं। इसीलिए भगवान जो है वो परम पवित्र है और भगवान के साथ जिसका संपर्क हो जाता है जीव का वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री हरि ने वराह का अवतार लिया तो जब वराह देव गर्भोदक्षाई समुद्र से बाहर निकले तो जब बाहर निकल रहे थे तो पूरा शरीर जैसे भीग गया था, तो अपने शरीर को ऐसे छटक रहे थे और अपने शरीर को जब झटके तो उनके शरीर से बहुत सारी बूंदें इधर उधर बिखर रही थी। हालांकि वराह यानी पिग जो होता है वो उसको अपवित्र माना जाता है, वो गंदी जगह में रहता है, कोई भी उसको स्पर्श करना नहीं चाहता, कोई भी उसके निकट जाना नहीं चाहता, लेकिन भगवान भले वराह के अवतार में थे, वराह के स्वरूप में थे, फिर भी वहां पर देवता खड़े होकर स्तुति करते हैं और कहते हैं, वे कहते हैं विदुन्वता वीतमयम् निजम् वपुर् जनस्तपस्सत्य विना निवासिनो वयम् षटशिखोधूत विषम्भुवम् बिन्दुर्भिः विमृज्यमाना विषमेश पाविता। अर्थात इस समय जो उत्तम लोकों के वासी थे, जनस तपस सत्य जनलोक के वासी, तपलोक के वासी, सत्यलोक के वासी, जो बहुत बहुत तपस्याएं करके उन लोगों को प्राप्त किए थे, वो सब प्रतीक्षा कर रहे थे शतशिखोधूत विमिश भुवम बिंदुर भी, एक बूंद यदि भगवान के शरीर से निकले हुए जल की एक बूंद भी हमें प्राप्त हो जाए तो वे कहते हैं कि विमृज्जमानाम् शमेश पाविता, कि उससे हम पवित्र हो जाएंगे। एक बूंद यदि भगवान के शरीर से निकलेगी तो वो हमारी अपवित्रताओं को समाप्त कर दे। तो यहाँ पर दो पॉइंट समझने के हैं कि उन उत्तम लोकों के प्राणी भी भगवान जो कि अभी सूकर के शरीर में हैं, तब भी वो भगवान ही हैं, है ना। क्योंकि भगवान के अंदर अपवित्रता नहीं है, तो वो इतने उत्तम लोकों के प्राणी भी वो एक बूंद के लिए इच्छा कर रहे थे, तरस रहे थे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो बोलते हैं कि इससे हम पवित्र हो जाएंगे, यानी आपके शरीर के से जो जल निकल रहा है इसका मतलब है देवताओं के लोकों में भी अपवित्रता होती है, हृदय के अंदर अनर्थ होते हैं जो केवल भगवान की संगति से ही या शुद्ध भक्तों की संगति से ही दूर हो सकते हैं। एक और उदाहरण श्रीमद् भागवतम में, जब पूरे संसार में अपशगुन हो रहे थे, बहुत सारे भूकंप आ रहा था, तूफान आने लगे, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आए, वो घबराए हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दो बहुत ही भयंकर राक्षस जन्म लेने वाले हैं, जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षपु। तो श्रील प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में बताते हैं कि उस समय देवता लोग सब इतने घबरा गए थे, क्योंकि ये जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था, तो उसके कारण वो घबरा कर वो ब्रह्मा जी के पास गए। यानी कि यहाँ पर ये समझाने की बात ये है कि हर जीव की चार प्रॉब्लम्स होती हैं और वो पूरा जीवन उनको सॉल्व करना चाहता है। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना। हर व्यक्ति इन्हीं को सॉल्व करना चाहता है। अब देवताओं के लोकों में क्या है, तीन जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से उनकी पूरी सुंदर व्यवस्थता है। क्या? आहार बहुत ही सुंदर तरीके से पर्याप्त मात्रा में है, निद्रा की कोई टेंशन नहीं है, मैथुन की कोई टेंशन नहीं है, भौतिक इंद्रिय सुख की कोई टेंशन नहीं, लेकिन भय वहां पर भी है, भय से सुरक्षा वहां पर भी नहीं है, इसीलिए वो सदैव भयभीत रहते हैं। कोई तपस्या करने बैठ जाता है तो इंद्र का आसन ढोलने लगता है, कोई भक्ति करने लग जाता है तो परेशान हो जाते हैं, भगवान यहाँ पर आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं तो उनसे भी वो भयभीत हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 40 में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो धर्म का मार्ग है, मेरी भक्ति का जो मार्ग है, उसमें थोड़ी सी भी प्रगति मनुष्य को महाभय से बचा देती है। तो वास्तविकता तो ये है कि यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि सारे देवी देवताओं को अलग से प्रसन्न किया जाए। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि एक बार दक्ष प्रजापति ब्रह्मांड के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। अब जब सारे देवी देवता, राज्य ऋषि, ब्रह्म ऋषि सब उपस्थित हो गए, उस समय जब दक्ष प्रजापति यज्ञशाला में आए तो सारे देवता दक्ष प्रजापति के सम्मान के लिए खड़े हो गए। सारे देवता तो उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु महादेव शिव नहीं खड़े हुए। अब क्योंकि दक्ष प्रजापति को मिथ्या अहंकार था, फिर वो मिथ्या अहंकार से भरे हुए थे और वो अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सके कि महादेव ने उनका सम्मान नहीं किया, तो इससे क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, सारा वातावरण दूषित हो गया। प्रजापति महादेव को श्राप देने लगे और कहने लगे कि अब किसी भी यज्ञ में आपका भाग नहीं निकाला जाएगा। और महादेव के गण जो थे वो दक्ष प्रजापति को श्राप देने लगे और इस तरह से वातावरण पूरा दूषित हो गया। उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ, महादेव शिव उस यज्ञशाला से उठकर चले गए, उस यज्ञशाला को छोड़कर चले गए और दक्ष प्रजापति भी चले गए और कुछ और भी देवता वहां से चले गए। अब यहाँ पर मुख्य बात कहने की क्या है कि हालांकि दक्ष प्रजापति और महादेव शिव जो कि देवों के देव दक्ष प्रजापति जो कि वहाँ मुख्य यजमान थे जिन्होंने यज्ञ करवाया था वो, और महादेव शिव जो कि देवों में सबसे ज्यादा महान है, ये दोनों भी यज्ञशाला छोड़कर चले गए, परंतु फिर भी ऋषियों ने यज्ञ को जारी रखा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि ये दोनों चले गए परंतु ऋषियों ने फिर भी यज्ञ को जारी रखा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड हरि को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ को कंटिन्यू रखा। वास्तव में जो भक्ति है वो भगवान के लिए, यज्ञ तपस्या जो कुछ की जाती है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 5.29 में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यहाँ पर ये बात समझने की है कि यदि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि सारे देवी देवताओं को अलग अलग से प्रसन्न किया जाए। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरे देवी देवताओं को भी प्रसन्न करो, परंतु यदि कोई व्यक्ति अलग से किसी देवता को प्रसन्न करना चाहता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरा लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने भी देवताओं के उपासक हैं, चाहे उन्होंने कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न की हो, जैसे रावण हो, हिरण्याकश्यपु, रावण ने शिव जी की तपस्या की, हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, परंतु अंत में क्या हुआ, उनका सर्वनाश हो गया। परंतु कोई पूछे कि ये सब तो असुर थे तो इसीलिए उनका सर्वनाश हुआ, परंतु भगवान ने असुर की परिभाषा तो यहाँ श्रीमद् भगवत गीता 7.15 में दी है कि अगर कोई भले ही असुर नहीं है और फिर भी वो भगवान की सेवा नहीं करता है, श्रद्धा से वो देवताओं के पास जाता है, वो किसी और के पास जाता है, भगवान के पास आता नहीं है, भगवान ने कहा नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परत्त ज्ञान असुरम भावमाश्रितम। मैं बताता हूँ असुर की परिभाषा, जो मेरी शरण में नहीं आता है वो असुर है, वो दुष्ट है, वो मूढ़ है, और वो माया द्वारा ज्ञान उसका हर लिया गया है, और वो ही आसुरम भावमाश्रित, आसुर की प्रकृति यही है कि वो मुझे शरण, मेरी शरण में नहीं आता है, तो वो मूढ़ है, नराधम है, असुर है, माया के द्वारा उनकी बुद्धि हार ली जाती है, जो कि देवताओं की उपासना करते हैं मगर भगवान के पास नहीं जाते। इच्छाओं ने जिनको अंधा कर लिया है, काम है स्तस्ता है हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते, इससे ज्यादा और क्या असुर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे देवता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं, अलग से उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद में आता है कि जब परचेता, अब एक बादशाह है पराचीन दरही शत, और उनके पुत्र हैं, उनको परचेता कहा जाता है, वो भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जा रहे थे, तो उस समय वहां पर अभी वो क्या कर रहे थे, परचेता तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर महादेव पधारे। वास्तव में महादेव के दर्शन हर किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तब महादेव ने परचेता को बताया कि यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि वैसे तो लोग केवल महादेव की दर्शन करने के लिए बहुत बहुत तपस्या करते हैं, और यहाँ पर महादेव स्वयं ही उनके दर्शन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और वो महादेव की भक्ति करने के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि परचेता ने अभी तक तपस्या करना प्रारंभ भी नहीं किया था, तपस्या शुरू करने से पहले ही महादेव आशीर्वाद देने के लिए, खाली अभी तो उन्होंने सोचा था कि तपस्या करने के लिए जा रहे हैं और भगवान हरि की तपस्या करने का निर्णय लिया था, और महादेव शिव इतना प्रसन्न हो गए। अब जरा विचार कीजिए कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान हरि की भक्ति करते होंगे उनसे देवता कितना प्रसन्न होते होंगे। तो यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि भाई ये तो ऐसा एटीट्यूड तो केवल महादेव का है, दूसरे देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं महादेव का मतलब होता है किंग ऑफ द डेमिगॉड्स, है ना। लॉर्ड शिवा इज एक्चुअली द लीडर ऑफ ऑल डेमिगॉड्स, ये सारे देवी देवताओं के लीडर है, महादेव है। जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे देवी देवता, मतलब शिव जी, अभी देखो उसके बाद क्या कहते हैं शिव जी, शिव जी कहते हैं सधर्मनिष्ठ शतजन्म विपुमान वीरिंसिताम हेति तथा परम हिमान अव्याकृतं भागवतो तवर्षनम पदम यथाहम विबुधा कलातये। मतलब शिव जी कहते हैं कि जब कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है। स्वधर्म निष्ठ शत जन्म विपुमान, कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक बहुत ही सुंदरता से वर्ण आश्रम का पालन करता है तो उसको क्या बनना दिया जाता है, ब्रह्मा बना जाता है। और जब वो और भी अधिक प्रगति करता है तो वीरेंचिता हेति तथा परम हिमा, फिर उसको क्या करता, वो मुझे प्राप्त करता है, यानी द अबोड ऑफ द शिव, लॉर्ड शिवा शिव जी के लोक को प्राप्त करता है। परंतु आगे वो कहते हैं अव्याकृतम भागवतो तवर्षवम, परंतु आगे क्या कहते हैं कि परम पुरुष भगवान की जो भक्ति करता है वो तो डायरेक्टली भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। वास्तव में भक्तों उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना अत्यंत ही दुष्कर है। यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि मैं यानी शिव और ब्रह्मा भी अपना धर्म बहुत अच्छी तरह से पालन करने के बाद ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। जबकि एक भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो फौरन से कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। देवताओं की उम्र बहुत ज्यादा होती है, हजारों मिलियन साल तक उनको अपने पद के अनुसार कार्य करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो कृष्ण प्राप्ति करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो स्वतः कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। देन वी कैन डिसाइड दैट विच इज द बेटर प्रपोजल, टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली और वर्शिप द डेमिगॉड्स इंडिविजुअली। यही नहीं, शिव जी आगे कहते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं जैसे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण। मैं शुद्ध भक्तों की सेवा उसी प्रकार करता हूँ जैसे स्वयं भगवान की करता हूँ। मतलब देवता खाली शिव जी खाली उनसे स्नेह नहीं करते बल्कि वो तो भगवान की तरह, जिस तरह भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों की भी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में और मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं है। और जो देवताओं की खाली भक्ति करते हैं उनको तो बस उनकी इच्छाओं के अनुसार वर दे देते हैं, मतलब फॉर्मेलिटी, जिस तरह फॉर्मेलिटी होती है, एज अ फॉर्मेलिटी देवता लोग उनको उनके अनुसार वर दे देते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं बट डेमी गॉड्स आर एक्चुअली लव द डिवोटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा बाय हिज हार्ट, हृदय से वो परंतु देवताओं का अपने भक्तों के साथ तो केवल फॉर्मल रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर किसी को सिगरेट चाहिए तो वो मार्केट में जाता है, सिगरेट वाले को बोलता है एक पैकेट सिगरेट दो, तो वो नहीं पूछ बोलेगा कि भाई तुम्हारे इससे तो तुम्हें टीवी हो जाएगी, तुम्हारा ना फेफड़े खराब हो जाएंगे, लंग्स खराब हो जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं बोलेगा, सिगरेट के पैसे दो और सिगरेट ले जाओ। उसी तरह देवताओं की उपासना करो और अपने वर ले लो। परंतु कृष्ण कहते हैं ये भजन्ते तुमां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, मैं कोई व्यवहार नहीं करता, जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनका हो जाता हूँ और मैं उनके हृदय में रहता हूँ और वो मेरे हृदय में रहते हैं। जैसे बाप से यदि कोई बेटा बोलेगा कि मुझे सिगरेट लेकर दो तो बाप क्या करेगा, जोर से स्लिप मारेगा, सिगरेट पियोगे, पता नहीं तुम्हारे लिए कितना हानिकारक है। उस तरह भगवान हमारी उन भौतिक वस्तुओं को कभी कभी नहीं पूरा करते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। वास्तव में सारे देवी देवता भी भगवत भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए हमें देवताओं की नहीं बल्कि भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब हम कुछ उदाहरण से ये जानने का प्रयास करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी देवताओं की उपासना के विषय में क्या कहते हैं। एक बार एक भक्त ने श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि क्योंकि बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत विघ्न आते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम गणपति की पूजा करें। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया कि गणपति की पूजा करने से सब विघ्न नाश हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं आपकी प्रसन्नता के लिए हम गणपति की पूजा करें। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? सही है ये। देन श्री प्रभुपाद से, फर्स्ट यू पे $1 फॉर माई प्लेजर एज अ टैक्स, देन यू मे वर्शिप द लॉर्ड गणेशा। आप पहले $100 दो, $1,00,000 दो मुझे, उसके बाद है ना आप गणपति की पूजा कर सकते। तभी भक्त सोचने लगे कि अभी हम $1,00,000 कहाँ से लाए। तो फिर उन्होंने सोचा बस अभी हम लोग है ना गणपति की पूजा करेंगे नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आप कृष्ण की शरण में जाते हो तो आपको किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण आपकी समस्त प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में समर्थ है। यदि कृष्ण के होते हुए किसी और के पास जाते हो तो उसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप सोचते हो कि कृष्ण में योग्यता ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आप समझते हो कि मुझे किसी और से अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। नहीं, भक्त जो होता है वो भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखता है कि भगवान अवश्य वही करेंगे जो मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को बहुत बहुत सावधानी से समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने हमें कभी भी ये शिक्षा नहीं दी है कि हम देवताओं या देवताओं के उपासकों का अनादर करें। बल्कि कृष्ण तो कहते हैं कि मैं उनको भी श्रद्धा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहाया, सोनर नारकी गति पाया। अगर तुम मेरे भक्त कहलाते हो और देवताओं को शिव जी को अनादर करते हो तो तुम भले मेरे भक्त भी हो जाओ मगर फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। मतलब अनादर तो वैष्णव किसी पशु का भी नहीं करते, किसी जानवर का भी नहीं करते, सबका सम्मान करते। अमानी न माना देना ऐसा नहीं लिखा हुआ खाली वैष्णवों को मान देते, हर किसी को सम्मान करते हैं, हर किसी का आदर करते हैं, परंतु किसी की भक्ति नहीं करते। यहाँ पर हमें समझना होगा कि कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं तो उनको भी श्रद्धा देता हूँ और श्रद्धा के साथ साथ वो फल भी उन्हें देता हूँ कि कम से कम गलत तरीके से तो जानवरों की तरह तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं। वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार देवताओं के पास जाते तो हमको उनका आदर करना चाहिए, परंतु भक्ति केवल कृष्ण की करनी चाहिए क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही प्रदान करते हैं और किसी को भी अलग से देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम देवताओं को उससे भी अधिक प्रसन्न कर सकते हैं जितना कि हम स्वयं देवताओं की भक्ति करके। तो हमें सब देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करते वक्त भी हमें यही सोचना चाहिए, देवताओं से हमें यही वर मांगना चाहिए कि आप कृपा करके हमें आशीर्वाद दो कि हम भगवान श्री कृष्ण की अच्छी भक्ति कर सकें। आप महान हो, महान पद पर हो, आपके आशीर्वाद से, आप परम वैष्णव हो, आपके आशीर्वाद से हम अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दो। भौतिक लाभ के लिए उनको भगवान समझ कर उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, यही इस श्लोक से हमें समझ में आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।